Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can connect with us on 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. And of course, do prefix the code 011. Along with Subodh Mishra, I am Sarabjit Kaur.
धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
जी, बहुत धन्यवाद.
पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत.
यूएस कट्स टैरिफ्स ऑन सेवरल फूड आइटम्स इंक्लूडिंग दोज इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. डोमेस्टिक मार्केट्स टू फोकस ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड ग्लोबल ट्रेंड्स फॉर क्यूज नेक्स्ट वीक एंड ग्लोबल कोल्ड प्राइसेस जंप ओवर 2% लास्ट वीक.
अमेरिका ने भारत समेत कई देशों से आयातित खाद्य वस्तुओं पर शुल्क कम किया. अगले हफ्ते भारत के शेयर बाजारों का फोकस रहेगा देश के आर्थिक संकेतकों और वैश्विक उतार चढ़ाव पर. और पिछले हफ्ते सोने की वैश्विक कीमतों में 2% का उछाल.
Before we take you further in the program, we'd like to remind our listeners the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And
हमें खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं. जी,
यस. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज कट टैरिफ्स ऑन फूड इंपोर्ट्स. इंडियाज मैंगो, पोमेग्रेनेट एंड टी एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम द मूव. व्हाइट हाउस हैज अनाउंस्ड दैट ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड जूसेस, टी एंड स्पाइसेस आर अमंग द इंपोर्ट्स दैट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय रेसिप्रोकल टैरिफ्स. अदर आइटम्स मेंशनड इन द व्हाइट हाउस फैक्ट शीट इंक्लूड कॉफी एंड टी, कोकवा, ऑरेंजेस, टोमेटोज एंड बीफ. Trump had previously imposed 25% reciprocal tariffs on imports from India and added an additional 25% punitive tariff for buying Russian oil. To contain inflation, Trump earlier exempted generic medicines from tariffs, benefiting India, which supplies 47% of the generic medicines prescribed in the US. Some of the increases in food prices were due to the higher tariffs, which were passed on in whole or in part by importers and retailers to customers. In recent elections in New York City, New Jersey, and Virginia, Democrats' campaign focus on affordability, rising costs, straining voters' budgets contributed to their victories. While Trump has been engrossed in international affairs, tariffs, and investments, voters were concerned with the more immediate issue of rising prices. An NBC News poll released this week showed that 63% of all registered voters said Trump had fallen short of their expectations on the cost of living and the economy, including 30% of Republicans.
जी, कुछ कॉलर से इंतजार कर रहे हैं. चलते हैं सहारनपुर विवेक के पास. विवेक, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
मार्केट मंत्रा टीम और एक्सपर्ट को नमस्कार.
नमस्कार.
मैं म्यूचुअल फंड में इक्विटी क्लास में SIP के द्वारा ETF से इन्वेस्टेड हूँ और मैं अब डेप्ट में निवेश करना चाहता हूँ. जैसे सर हमने मेरे पास जो इक्विटी में फंड है वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा और निपोन इंडिया मल्टी कैप कोर्ट पोर्टफोलियो में है सर. तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि हम जो डेप्ट में निवेश करें, मुझे इनके लिए तीन अलग अलग लिक्विड फंड तीनों AMC के अलग अलग लेने चाहिए या मुझे केवल एक ही डेप्ट फंड या लिक्विड फंड मुझे सिलेक्ट करना चाहिए. क्योंकि सर जैसे हमने आपके प्रोग्राम में सुना है या पढ़ा भी है कि जब भी अगर हम अपने पोर्टफोलियो को वन ईयर में रीबैलेंस करते हैं तो हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम डेप्थ के निवेश को घटाकर अपना इक्विटी का पोर्टफोलियो बढ़ाएं और इक्विटी में निवेश बढ़ाएं, तो उसके लिए मुझे तीनों के अलग अलग एएमसी में निवेश करना चाहिए या केवल एक ही लिक्विड फंड में निवेश करना चाहिए, कृपया इसके बारे में बताएं।
जी देखिए, आमतौर पर अगर आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आपको एक फंड, एक डेट फंड लेना चाहिए, उससे ज़्यादा। इसके लिए आप ये देखिए कि आपके टोटल पोर्टफोलियो का कितने प्रतिशत पैसा आप डेट फंड में रखना चाहते हैं। आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी खासी मात्रा में इक्विटी फंड्स हैं, 3-4 फंड्स आपने नाम लिए आपके पास हैं, तो अगर जो आप डेट में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप अपना कुछ 10-15% पैसा ही इस टोटल पोर्टफोलियो का इंक्लूडिंग योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपका 10% या उससे भी कम रहने वाला है डेट में, तो एकमात्र फंड काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि आप एलोकेशंस को ओवरऑल पोर्टफोलियो के तौर पर देखिए। क्योंकि एक फंड अगर 10-15% आपकी एलोकेशन है तो मेरे लिहाज से बहुत है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में डेट में रखना चाहते हैं तो आप दो फंड ले लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। एक या दो अच्छे हाई क्वालिटी डेट फंड्स जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क या बहुत ज़्यादा क्रेडिट रिस्क नहीं लेते हैं, इस तरह के आप फंड्स चूज़ करिए। डेट में ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा रिटर्न देख कर ना इन्वेस्ट करें, लेकिन पोर्टफोलियो वर्स्ट रिटर्न उसने कैसा दिया है, कभी फंड में भारी गिरावट तो नहीं हुई है, कभी कोई बॉन्ड्स में उसके भारी दिक्कत तो नहीं देखी गई है। अगर एक फंड रीजनेबली थोड़ा सा एफडी से आपको एक कंसिस्टेंट तौर पर थोड़ा सा एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे देता है और एक हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो मेंटेन करता है, कॉस्ट उसका कम रहता है, एक्सपेंस रेशियो पर ध्यान दें, अगर ये सारी बातों पर वो खरा उतरता है तो मेरा ख्याल उसको एक अच्छा डेट फंड मानेंगे और आप ऐसे एक या दो फंड में निवेश कर सकते हैं।
वेल, आई सी सम कॉलर्स लाइंड अप फ्रॉम दिल्ली। योगेश जी, अपना सवाल पूछिए।
जी आशुतोष जी को मेरा नमस्कार। और मेरे सवाल एक्चुअली दो ये हैं कि एक तो एनपीएस को लेकर के है कि एनपीएस में अभी नया फ्रेमवर्क आया है, मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क, और हालांकि हम तो ऑलरेडी एनपीएस में इन्वेस्टेड है तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते नए वाले में, लेकिन क्या ये एनपीएस को एक इन्फीरियर म्यूचुअल फंड की तरह बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशो भी 10 गुना बढ़ा दिया गया है जो कि पहले बहुत कम होता था उसका एक्सपेंस रेशो। दूसरा सवाल मेरा ये है कि म्यूचुअल फंड के अंदर भी कितने एक डेट म्यूचुअल फंड के अंदर में अगर हमारे पास ऑलरेडी शॉर्ट टर्म फंड है तो क्या लिक्विड फंड इमरजेंसी फंड से अलग से लिया जाए या फिर उसी के अंदर हम उसको रख सकते हैं।
जी, तो पहला सवाल आपका एनपीएस को लेकर, देखिए एनपीएस एक अलग प्रोडक्ट है, हालांकि एक निवेशक को ये देखना है कि उसको एनपीएस में कितना रखना है म्यूचुअल फंड में। मैं एनपीएस को देखता हूँ कि वो आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए एक लो कॉस्ट बेहतरीन विकल्प है, तो आप एनपीएस को उस तरह ज़रूर देखिए। और बाकी जो ये नया फ्रेमवर्क आया एमएसएफ का, इसको थोड़ा और इवॉल्व होने दीजिए। यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल एनपीएस का फ्रेमवर्क है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है, काफ़ी उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप किस तरह के स्टॉक्स में किस टाइप का पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो उस फ्रेमवर्क में काफ़ी लिमिटेशंस हैं निवेशक के ऊपर भी और पेंशन प्रोवाइडर के ऊपर भी, पेंशन फंड प्रोवाइडर के ऊपर भी किस टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। एमएसएफ में वो काफ़ी छूट दी गई है, काफ़ी फ्लेक्सिबल एक फ्रेमवर्क इवॉल्व किया जा रहा है, तो लेट्स सी निवेशक के लिए कि विन विन नहीं होगा, क्योंकि अगर एमएसएफ आने वाले टाइम में एक अच्छी विकल्प के तौर पर उभरता है तो निवेशक के लिए तो म्यूचुअल फंड और एनपीएस दोनों ही एक विकल्प के रूप में सामने आएंगे, और जो बेहतर परफॉर्म करता है निवेशक को अपना पैसा उसमें लगाना चाहिए। तो आप एनपीएस में जो कर रहे हैं आप बढ़िया कर रहे हैं, अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो को उसमें आप निवेशित रहें। एमएसएफ को थोड़ा अपना वर्थ प्रूव करने दीजिए, प्रोडक्ट्स को लॉन्च होने दीजिए, उसके बाद इस पर विश्लेषण करेंगे कि निवेशक को इसके लिए क्या करना चाहिए। दूसरा सवाल आपका डेट का, देखिए आपको अलग फंड की जरूरत नहीं है इमरजेंसी कॉर्पस के लिए, लेकिन आप एक अमाउंट अगर आपने ईयरमार्क किया हुआ है कि ये इतना मात्रा में मेरा पैसा एक इमरजेंसी कॉर्पस के रूप में है, इसको मैं स्टेबिलिटी के साथ रखूंगा इस पैसे को, और तभी इसको हम रिडीम करेंगे जब वाकई में कोई इमरजेंसी आन पड़े, भगवान ना करे उसकी आपको कभी यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन उसके लिए आपको अलग कोई फंड की ज़रूरत नहीं है। आप लिक्विड फंड में, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, इस टाइप के किसी एक फंड में ये धनराशि को आप इकट्ठा करके रख सकते हैं।
सो मोर लाइक अ मेंटल प्रिपरेशन।
यस, यू डोंट नीड अ सेपरेट फंड फॉर दैट, इट्स जस्ट एन एलोकेशन विच यू हैव ईयरमार्क्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस।
जी, अगले कॉलर है दिल्ली से नरेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
वेरी गुड इवनिंग टू ऑल पैनलिस्ट। I'm about to be 60 now. I have been doing through broker mutual funds last 15 years, but I never took care of what he's doing or what he's telling for the tax saving. So now I want just to be safer side to invest in mutual fund, and I don't know even need bits of that. So kindly explain me what is the mutual fund and what is equity and what is the debt, and that I don't know at all. May I read also and then I get to know, but I keep following your program. I want to know details that how do I do about it.
Sure. So it can be a lengthy discussion, but let me try to frame my answer in a very concise way and hope it helps you. So broadly, mutual funds, you can see, can be of 2-3 types. One is funds that invest your money in share markets and you get the gains which are in sync with the equity markets. And naturally, you know, these funds rise and fall in tandem with the equity markets. The aim of the fund manager is to give you a little, when the markets are rising, give you a little more than the market. And when the markets are falling, try to protect that a little bit and fall slightly less than the market. If a fund manager is able to do that consistently well, then I think he has done a good job for you. So there are equity funds which invest in stock markets. These are high risk, high return funds meant only for the long term. Invest only the money which you have earmarked for 5 years or more. Then there are debt funds which invest in bonds and debentures. They are relatively low risk and they also give you relatively low return. You can look at them as alternates to fixed deposits. With a slightly more risk than FDs, they can aim to give you slightly more returns. And they can be, you know, for your short-term needs or some allocation in your long-term portfolio. And then there are hybrids which invest in a combination of stocks and bonds in varying proportions. So in a nutshell, these are the three types of funds. Now, you know, funds are well regulated, very transparent, but they do not guarantee returns, unlike FDs. They do not give you any guaranteed returns. You take the market risk, it's your decision, so you have to plan it carefully. But over a long term, they've proved to be rewarding. They've proved to be a very well regulated option. So for a retail investor who wants to participate in the markets, who wants to achieve market linked returns and aim to generate wealth, mutual funds over the years have proved to be the most viable and the most robust in a regulatory way option for retail investors. So with that framework, you can consider them.
Well, our next caller again from Delhi, Amit ji, apna sawal poochiye.
Ji, namaskar, Sarjeet madam aur Subhash sir aur Gupta ji ko bhi. Sarjeet madam, aapne bola tha global gold price aur Subhash Mishra sir ne bataya global gold price 2%. To ye dono mein se kaun sa sahi hai, pehli baat. Dusri baat, sawal ye hai Gupta ji se ki sir, hybrid fund और मल्टी कैप फंड, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? और मल्टी कैप फंड में स्मॉल कैप भी है और स्मॉल कैप भी है और मिड कैप भी है, तो मल्टी कैप फंड बनने का पर्पस ही क्या है कि जब स्मॉल कैप और बना हुआ है और मिड कैप बना हुआ? धन्यवाद सर
जी. आपका सवाल मल्टी कैप और हाइब्रिड में फर्क क्या है? देखिए, दो काफी अलग टाइप के फंड्स हैं. मल्टी कैप फंड्स आपका सारा पैसा इक्विटी मार्केट्स में निवेश करते हैं, और हाइब्रिड फंड्स कुछ मात्रा में आपका पैसा इक्विटी में और कुछ मात्रा में डेट में निवेश करेंगे. तो आप ऐसे सोचिए कि मल्टी कैप फंड्स हाई रिस्क हाई रिटर्न प्रोडक्ट हैं, हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी फंड्स के मुकाबले कुछ थोड़ा कम रिस्क होगा और उनकी रिटर्न जनरेट करने की क्षमता भी थोड़ी कम होगी. अब हाइब्रिड्स में बहुत टाइप के हाइब्रिड्स आते हैं, अलग अलग मात्रा में वो इक्विटी और डेट को कंबाइन करते हैं, उससे उनका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल अलग हो जाता है. लेकिन जहाँ मल्टी कैप फंड्स की बात करें, तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि मल्टी कैप फंड्स में मैंडेट है कि वो 25-25% कम से कम अपना पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करें, और बचे हुए 25% के लिए उनको छूट है कि वो किस तरह इन्वेस्ट करें. तो किसी भी समय मल्टी कैप फंड में कम से कम आपका 25% पैसा मिड कैप और 25% पैसा स्मॉल कैप में जरूर इन्वेस्टेड रहेगा. ये उनका मैंडेट कहता है और इससे वो डिग नहीं सकते हैं. अब इनका एडवांटेज ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अलग से मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स भी आते हैं, तो मल्टी कैप की यूटिलिटी क्या है? देखिए, मल्टी कैप एक छोटे निवेशक के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए, अगर आप बहुत अलग अलग बहुत सारे फंड्स में निवेश नहीं करना चाहते, आपको एक पैकेज में पूरी मार्केट का एक्सपोजर मिल जाता है. और एक तो वो छोटे निवेशक के लिए बहुत फायदेमंद है. अगर आपको 5-7 हज़ार रुपये का SIP करना है, तो एकमात्र फंड से आपको पूरी मार्केट का एक्सपोजर मिल जाता है. दूसरा, आपकी रीबैलेंसिंग बहुत एफिशिएंट होती है. अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में अलग अलग इन्वेस्ट करते हैं, पीरियोडिकली आपको शायद अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, रिलेटिव परफॉर्मेंस उनकी कैसी है. लेकिन यहाँ पे रीबैलेंसिंग ऑटोमेटिकली आपकी एक फंड के अंदर हो जाती है. तो कहने का मतलब यह कि एक पैकेज में एकदम हैसल फ्री हैंड्स ऑफ वे में अगर आपको पूरी मार्केट का एक्सपोजर चाहिए एक सिंपल तरीके से तो मल्टी कैप फंड्स एक अच्छा विकल्प है.
और हम श्रोता बहुत हमारे अच्छे श्रोता हैं जिन्होंने कि हमारे हेडलाइन पर भी कुछ पूछा था. हम वैश्विक कीमतों की ही बात कर रहे हैं जिसे अंग्रेजी में ग्लोबल कह रहे हैं.
जी
जी. अगले कॉलर है मुंबई से अमित, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
थैंक यू सर. सर मेरा सवाल ये था कि डेट फंड में मैंने देखा उसमें ओवरनाइट फंड, शॉर्ट टर्म फंड ऐसे कुछ फंड्स हैं और उसका CAGR जो है CAGR 8% के लगभग है. तो क्या और उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट बॉन्ड ऐसे कुछ दिखा रहा है उसमें, तो बिल्कुल फायदेमंद है. लेकिन ये कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये फायदेमंद है क्या CAGR? और CAGR ये साल का होता है इंटरेस्ट या दो तीन साल का, इसका मतलब जरा बताएंगे CAGR का.
जी तो पहले तो CAGR देखिए, CAGR बताता है आपको औसतन एक एवरेज एनुअल रिटर्न. तो अगर आप CAGR आपका दो साल का भी हो सकता है, तीन साल का भी हो सकता है, पांच साल का भी हो सकता है, दस साल का भी हो सकता है, लेकिन अगर आप दस साल का CAGR देख रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि पिछले दस साल के अगर इस फंड के रिटर्न देखें और उसका एवरेज सालाना रिटर्न निकालें तो वो ये आएगा. तो अगर आपको CAGR 8% दिख रहा है तो वो एक एनुअल, आप उसको एवरेज एनुअल रिटर्न, एवरेज सालाना रिटर्न के रूप पर देखें तो वो एक सालाना रिटर्न आप उसको माने. डेट फंड्स में देखिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करते हैं. आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत के ऊपर. अगर आप बहुत छोटी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, एक दो या तीन साल के लिए निवेश कर रहे हैं जिसमें कि इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है तो डेट फंड्स की सलाह दी जाती है. डेट फंड्स आपके लिए अच्छा विकल्प है. अगर आपको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में कुछ डेट की मात्रा बरकरार रखनी है उसके लिए भी डेट फंड्स एक अच्छा विकल्प है. आप इनको एक FD का ऑल्टरनेट के रूप में देखें कि आप FD से ये आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देने में सक्षम हो सकते हैं. थोड़ा सा आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा लेकिन ये फंड्स FD के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न देने में सक्षम रहते हैं. तो आपको उस अपनी उस नीड के लिए, उस ज़रूरत के लिए इनको एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं. बहुत तरीके के डेट फंड्स हैं मार्केट में लेकिन मुझे लगता है मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स का काम बहुत छोटी अवधि के लिए, आपको कुछ महीनों के लिए या साल भर तक के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप लिक्विड फंड्स देख सकते हैं. उससे ज़्यादा अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स देख सकते हैं. बहुत टाइप के डेट फंड्स हैं लेकिन मेरे हिसाब से एक आम निवेशक का, एक रिटेल इन्वेस्टर का इन दो कैटेगरीज से काम हो जाता है.
वेल फ्रॉम दिल्ली लेट्स गो टू मुंबई. रत्नाकर प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. I think we've not been able to connect with Ratnakar. Let's connect with our next caller, Nitin from Delhi. Nitin ji, apna sawal poochiye.
Haan ji, namaskar ji.
Ji, namaskar.
Haan, mujhe ye poochna hai ki private bankon mein aur sarkari bankon mein jo mutual fund ke agent hote hain, ye kya apne alag alag fund manager hote hain? Jaise private bank mein agar hum isse mutual fund dete hain to wahan kuch alag तरीके से जमा करते हैं अपने, हमारे को कुछ सही कंफ्यूजन हो रहा है कि सरकारी वाले बोलते हैं हम इसको करेंगे, ये बोलता नहीं करेंगे, प्राइवेट बैंक वाले कहते हैं हमारा फंड अलग होता है, ऐसा क्या समझ नहीं आया.
देखिए जितने भी तमाम बैंक हैं चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, वो म्यूचुअल फंड्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं. वो आपको म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बेचते हैं, उनके बदले म्यूचुअल फंड कंपनी से उनको कमीशन मिलता है. अब वो बात अलग है कि अलग अलग बैंकों की रिकमेंडेड लिस्ट पे अलग अलग फंड हो सकते हैं. कोई बैंक आपको कोई फंड रिकमेंड करता है, उनके मुताबिक जो उन्हें फंड पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, वो आपको वो रिकमेंड करते हैं. आप दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे बैंक में जाएंगे, उनको शायद दूसरे फंड्स अच्छे लगते हैं, वो आपको दूसरे फंड रिकमेंड करेंगे. तो देखिए किसी भी व्यापार में है, आप कहीं भी अगर जाएंगे, आप अलग अलग लोगों से सलाह मशवरा करेंगे, सबकी ओपिनियन अलग होती है, हर कोई आपको कोई और प्रोडक्ट, शायद तरह तरह के प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे. तो आप आमतौर पर आप जिस भी बैंक के थ्रू आप डील करते हैं, जहाँ भी आपका बैंक अकाउंट है, आप उनसे बात करें अपना, और अगर आपको जानकारी का अभाव है, आप नहीं इसको जानते लेकिन आप म्यूचुअल फंड की शुरुआत करना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा, सबसे सिंपल और आसान तरीका है आप एक निफ्टी का इंडेक्स फंड चूज करें, कोई भी निफ्टी का इंडेक्स फंड चूज करें और उसमें अपना निवेश शुरू करें। उसमें आपको बहुत ज़्यादा चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है, निफ्टी में इन्वेस्ट करने वाले सारे ही फंड तकरीबन एक जैसे होते हैं किसी भी कंपनी का, तो वहाँ पे आपको चॉइस नहीं करनी पड़ती। और आप म्यूचुअल फंड में चाहे छोटे अमाउंट से शुरू करें, आप शुरुआत करेंगे तो थोड़ा आपको जानकारी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए अपने डिसीजन बेहतर तरीके से लेने में अपने आप को समर्थ पाएंगे। तो आप शुरुआती इन्वेस्टर हैं तो आप एक इंडेक्स फंड से शुरू करें, और इंडेक्स फंड में चॉइस का बहुत ज़्यादा कोई रोल होता नहीं है, कोई भी आप निफ्टी का बेस्ड इंडेक्स फंड ले लेंगे तो वो लगभग आपको सेम ही रिस्क रिटर्न प्रोवाइड करेगा।
जी, अगली कॉलर है दिल्ली से विमला, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
ये सवाल हमारे मंदिर में भी आपके, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट वो जो था हमने पहले लिक्विड फंड में रखा था, तो लिक्विड फंड में एक खासियत थी कि वो रोज रात को थोड़ा बढ़ गया था, सैटरडे रात को भी बढ़ता था, लेकिन फिर हमने सोचा कि शॉर्ट टर्म डेट फंड में थोड़ा ज्यादा रिटर्न है तो उसमें उसको ट्रांसफर किया जाए, पर उन्होंने बताया कि शॉर्ट टर्म डेट फंड में रात को कभी कभी जो रिटर्न होता है वो माइनस में भी हो जाता है थोड़ा सा और रोज नहीं बढ़ता है, तो लेकिन कहा जाता था कि शॉर्ट टर्म फंड में ज्यादा रिटर्न मिलता है ओवरऑल, तो ये कैसे पॉसिबल?
जी देखिए, आपकी दोनों ही ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि लिक्विड फंड एक बिल्कुल जो लोएस्ट रिस्क और लोएस्ट रिटर्न टाइप का जो प्रोडक्ट अगर म्यूचुअल फंड में है तो आप उसको लिक्विड फंड को मानिए। उसमें बहुत ही रेयर कभी ऐसा देखा गया है कि वन डे रिटर्न भी कभी नेगेटिव गया हो, लिक्विड फंड में जनरली नेगेटिव रिटर्न डे टू डे बेसिस पे भी नहीं देखा जाता, लेकिन उनके रिटर्न भी फिर काफ़ी मॉडरेट होते हैं। उनको आप एक अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट का विकल्प समझें कि आप जो पैसा अपना आइडियल पैसा आपका सेविंग बैंक अकाउंट पे रहता है उस पे आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो लिक्विड फंड उनके लिए एक अच्छा विकल्प है। वहीं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स लिक्विड फंड के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क और थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देने में समर्थ हैं, तो वो डे टू डे बेसिस पे हमेशा ही लिक्विड फंड की तरह बढ़ें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़े लॉन्ग टर्म में, अगर आप 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर के होराइजन पे देखेंगे तो आमतौर पर आप पाएंगे कि लिक्विड फंड से ज़्यादा रिटर्न शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स देंगे। तो आप अगर डे टू डे बेसिस पे कंपेयर करें तो एक अनफेयर कंपैरिजन है, आपको रोज़ के रिटर्न के बेसिस पर एक लिक्विड फंड को और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड को कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप अपनी अवधि बढ़ाएं, आप कभी भी उनको देखें तो उनके रिटर्न को कम से कम 6 महीना या 1 साल के रिटर्न पर कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स तकरीबन लिक्विड फंड से ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, वो डेली बेसिस पर आपको पॉजिटिव रिटर्न दे ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये एक्सपेक्टेशन के साथ आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में ना इन्वेस्ट करें।
वेल, आवर नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, वीरेंद्र जी अपना सवाल पूछिए।
नमस्ते, गुप्ता जी से मेरा एक गुप्ता जी को कॉम्प्लीमेंट है कि आपकी आवाज बिल्कुल धीरेंद्र कुमार की वैल्यू रिसर्च की आवाज से लगती है, जब भी आप बोलते हो मुझे लगता है धीरेंद्र कुमार बोल रहा है, आपकी क्लैरिटी भी है, आपको नॉलेज भी है, तो क्या आप वैल्यू रिसर्च से संबंधित हैं और धीरेंद्र से रिलेटेड हैं? दूसरा क्वेश्चन ये है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है आपको, दूसरा ये है मिराई एसेट नैस्डेक NYSE फेंग जो एक फंड है उसमें 2 साल से कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं होता, ये फंड का क्या प्रॉब्लम है? RBI ने क्या लगा रखा है या ये लोग क्या कर रहे हैं? ग्रोथ बहुत अच्छी थी लेकिन इसमें अब कोई डिपॉजिट कर ही नहीं सकता, ये क्या इशू है? थैंक यू।
जी देखिए, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, फैंग प्लस में निवेश अभी बंद है, लेकिन ये सिर्फ फैंग प्लस की कहानी नहीं है, ये तकरीबन तमाम जो इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स में निवेश करने वाले हिंदुस्तानी म्यूचुअल फंड्स हैं, ये कहानी सभी की है। और जो आपने सही कहा कि RBI ने जो एक लिमिट सेट करी हुई है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के लिए कि वो बाहर के बाजारों में कितना पैसा निवेश कर सकते हैं, तो वो लिमिट्स अभी हिट हो गई हैं, वो अपर लिमिट पर है पैसा और म्यूचुअल फंड्स के पास अभी ये छूट नहीं है कि वो और उससे ज़्यादा पैसा बाहर लगा पाएं, तो उन्होंने और पैसा लेना बंद कर दिया, क्योंकि अगर वो आपसे पैसा लेंगे और बाहर लगा नहीं पाएंगे तो आपका पैसा म्यूचुअल फंड के अकाउंट में पड़ा रहेगा और वो रिटर्न नहीं जनरेट करेगा और वो एक सोर्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो म्यूचुअल फंड्स ने निवेशकों के हित में ही ये डिसीजन लिया है कि वो जब तक उनको आगे लिमिट नहीं बढ़ेगी तब तक वो ये पैसा नहीं लेंगे। तो वो बीच बीच में कभी कभी कुछ फंड्स में अगर कुछ आउटफ्लो हो जाता है, कुछ उनके पास कैपेसिटी बिल्ड होती है, तो वो अपने गेट्स ओपन करते हैं, ब्रीफ पीरियड के लिए आप उनमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन वो जब लिमिट दोबारा हिट हो जाती है वो फिर से गेट्स लगा देते हैं। तो ये सिलसिला कुछ मेरे ख्याल 3-4 साल से चल रहा है। अब ये लिमिट्स क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है, आरबीआई का इस पे क्या रुख है? देखिए ये तो आरबीआई ही बता पाएगा, मैं इसका जवाब देने में असमर्थ हूँ, लेकिन हाँ आप इनका ट्रैक रखिए, क्लोज वॉच रखिए। फैंक प्लस एक अच्छा विकल्प है इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स में, जब खुले आप तब निवेश करिएगा, तब तक आप पेशेंटली उसको ट्रैक करिए।
जी अगले कॉलर है मुंबई से रत्नाकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हेलो गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग,
मेरा सवाल है कि ये जो ईएलएसएस फंड है, ईएलएसएस फंड का अभी टैक्स बेनिफिट के लिए कुछ फायदा हो सकता है क्योंकि इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है, उसके लिए ये सवाल है। और दूसरा सवाल है कि गोल्ड लेने के लिए म्यूचुअल फंड में क्या ऑप्शंस है, गोल्ड हम कैसे ले सकते हैं म्यूचुअल फंड? थैंक यू।
जी आपका पहला सवाल,
पहला सवाल ईएलएसएस अभी नए स्ट्रक्चर हाँ, में कामयाब होगा या नहीं होगा, क्या है उसका?
तो देखिए ईएलएसएस को आप अगर आप न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जाते हैं जिसमें आपको कोई एटीसी का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आप ईएलएसएस को मानिए कि एक तरह का आपका फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें 3 साल का लॉक इन है, तो अदरवाइज उसमें टैक्स ही कोई और यूटिलिटी नहीं है, तो आप फ्लेक्सी कैप फंड या कोई भी और विकल्प उसकी जगह देख सकते हैं, टैक्स का बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, तो बिल्कुल गोल्ड में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं जो गोल्ड ईटीएफ्स या गोल्ड फंड ऑफ फंड्स के नाम से आपको मिलेंगे, आप उनमें गोल्ड में एक्सपोजर लेने के लिए आप उनको जरूर देख सकते हैं।
वेल लेट्स कनेक्ट विद संजय नाउ फ्रॉम मुंबई। संजय जी अपना सवाल पूछिए।
लगता है संजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है इस समय, से कट गया। अगली खबर पे गौर करते हैं कि बाजार का रुख क्या रहेगा, उसका अंदाजा लगाएं। पिछले हफ्ते 1.5% से ज्यादा की बढ़त के बाद अगले हफ्ते देश के बाजारों का फोकस सर्विसेज पीएमआई और बुनियादी ढांचे के आउटपुट के आंकड़ों जैसे संकेतकों पर रहेगा, क्योंकि दूसरी तिमाही की आमदनी की खबरों का दौर लगभग खत्म हो रहा है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो बाजार का मूड अमेरिका के अहम आर्थिक निर्णयों से प्रभावित होगा, जिसमें एफओएमसी की ताजा बैठक की जानकारियां भी शामिल हैं। 20 नवंबर को अमेरिका में सितंबर के जॉब्स के आंकड़े जारी होंगे और एफओएमसी की ताजा बैठक की जानकारियां भी सार्वजनिक की जाएंगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत से भारतीय शेयर बाजारों में साप्ताहिक कारोबार के अंतिम दिन उत्साह का रुख रहा। पिछले हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 1.6% की बढ़त रही। भारत में 20 नवंबर को अक्टूबर महीने के लिए बुनियादी ढांचे के आउटपुट का आंकड़ा जारी होगा और 21 नवंबर को पीएमआई डेटा जारी किया जाएगा।
गोल्ड प्राइसेस इन इंटरनेशनल मार्केट्स जंप्ड ओवर 2% लास्ट वीक टू एंड एट $4,084 पर आउंस, इवन आफ्टर ड्रॉप्ड 3% ऑन फ्राइडे ऑन हॉकिश रिमार्क्स फ्रॉम यूएस फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स डिमिंग होप्स फॉर अ डिसेंबर इंटरेस्ट रेट कट। Spot silver prices also surged over 5% during the week to end $50.58 per ounce.
जी और एक खबर अफगानिस्तान से भी है। पिछले महीने सीमा पर हुई झड़पों के बाद अफगानिस्तान अपने पड़ोसी पाकिस्तान पर निर्भरता कम करने के लिए ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमाओं पर लगातार आ रही बाधाओं से बचने के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 6 महीनों में ईरान के साथ उनका व्यापार $1,62,00,000,000 का था, जबकि पाकिस्तान के साथ $1,10,80,00,000,000 का था। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि विविध व्यापार मार्ग आयात निर्यात को स्थिर रखने के लिए जरूरी है। और आज वक्त इतना ही है। आशुतोष मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के बहुत अच्छे जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद।
लिसनर्स बिफोर वी रैप अप टुडेज शो अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। यूएस कट्स टैरिफ्स ऑन सेवरल फूड आइटम्स इंक्लूडिंग दोज इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। डोमेस्टिक मार्केट्स टू फोकस ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड ग्लोबल ट्रेंड्स फॉर क्यूज नेक्स्ट वीक। And global gold prices jump over 2% last week. And that's it in today's edition of Market Mantra. Until then, goodbye. See you tomorrow.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Mark it up.